समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी सुनने वालों को आपके अपने दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार बल का नमस्कार। कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस मुकेश राइटली सेड, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज स्पेशल वन बिकॉज टुडे इज ट्यूजडे। दिस इज festive season going on and there's Deepavali and there are holidays going on. So what did you do yesterday Mukesh?
बिल्कुल, जैसा अगर बात करें कल दीपावली थी तो दीपावली पर जैसा परंपराओं के अनुसार चलता है कि सुबह घर की साफ सफाई में लगे रहे, उसके बाद जो है अपना दिए वगैरह शाम को जलाए गए, उसके बाद लक्ष्मी पूजन हुआ, यही सब कल का कार्यक्रम रहा।
एब्सोल्युटली एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी गॉट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इट इज सच अ फन फेस्टिवल इनडीड, बट द ड्रॉबैक इज दैट वी बर्स्ट क्रैकर्स।
बिल्कुल,
एंड ड्यू टू दैट वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन दिस मॉर्निंग। वी कैन ऑलवेज अवॉइड दैट नेक्स्ट टाइम, राइट?
बिल्कुल बिल्कुल।
With this, let's just begin our program with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi has stated that India's defence production has tripled in the past decade, reaching 1.5 lakh crore rupees with over 40 indigenously built warships and submarines delivered since 2014. He said, India now produces most of its defence equipment domestically with a new warship or submarine added to the Navy every 40 days on average.
पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं।
Keeping up with his annual tradition of celebrating Diwali with the Indian Armed Forces, Mr. Modi celebrated the Festival of Lights with the Navy personnel on board India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant off the coast of Goa and Karwar yesterday.
Bihar Vidhan Sabha chunav ke pehle charan ke liye naam wapis lene ki samay seema kal samapt ho gayi. Ab 121 Vidhan Sabha kshetron ke liye kul 1314 umidwar maidan mein hain. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इस बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की भी समय सीमा समाप्त हो गई है। इसमें 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।
Reserve Bank of India said Indian economy continues to exhibit resilience amid an uncertain external environment and remains poised to register high growth. RBI's October bulletin said yesterday that indicators of capacity utilization and domestic demand signaled improvement. It said lead indicators of manufacturing and services continued to show a robust expansion, while inflation remained well below the target rate. The International Monetary Fund, IMF, has also upwards India's GDP growth projections for 2025 by 20 basis points to 6.6%.
दीपावली के उपलक्ष्य में स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE आज एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। ये प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 से दोपहर 2:45 के बीच आयोजित होगा। ये मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दीपावली के शुरू होने वाले नए हिंदू वित्त वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का भी प्रतीक है। NSE निफ्टी और BSE सेंसेक्स सूचकांक कल विक्रम संवत 2081 के अंतिम दिन पूरे वर्ष के सर्वाधिक उच्च स्तर पर बंद हुए। ऐसी मान्यता है कि मुहूर्त या शुभ समय के दौरान ट्रेडिंग करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय विकास होता है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि दीपावली को नए उद्यम शुरू करने का एक शुभ अवसर माना जाता है और कई निवेशकों का मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भाग लेने से पूरे वर्ष समृद्धि आती है। ये परंपरा सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से चिन्हित है, जहां व्यापारी और निवेशक आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि की कामना करते हुए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र अक्सर आशावाद और उत्साह से भरा होता है, क्योंकि और संस्थागत निवेशक दोनों ही इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे तरलता और व्यापार बढ़ता है। इसके अलावा त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे 8,000 अतिरिक्त रेलगाड़ियों की सुविधा उपलब्ध कर रहा है। मध्य रेलवे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस और वाराणसी के बीच 12 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। मध्य रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विशेष रेलगाड़ी संख्या 04225 इस महीने की 14 तारीख से चलाई गई है, जो 18 नवंबर तक चलेगी। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राजधानी दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान श्री वैष्णव ने पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य और पूर्व रेल के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें ट्रेनों को समय पर पहुंचाने से जुड़े निर्देश दिए। इस वर्ष रेलवे ने चालू त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। रेलवे भारतीय रेल दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से इन रेलगाड़ियों का संचालन कर रही है।
Moving on to the world of sports, India bagged two more medals in Kurash, a traditional form of wrestling, at the Asian Youth Games 2025 in Manama, Bahrain, yesterday. We have more from Sports Desk.
Till now, India has won a total of 3 medals in Kurash at the Asian Youth Games 2025. In the women's 52kg category, Kanishka Bidhudi won silver after a hard-fought 3-0 loss to Uzbekistan's Mubina Bonu Karimova in the final. Moreover, Arvind secured bronze in the men's 83kg category. On to ICC Women's ODI Cricket World Cup, where Sri Lanka defeated Bangladesh by 7 runs in Navi Mumbai last night. The result keeps Sri Lanka's semi-final hopes alive, while Bangladesh campaign ends following their 5th defeat of the tournament. In today's fixture, South Africa will take on Pakistan in Colombo at 3 p.m. Some more in cricket, Parvez Rasool, the first player from Jammu and Kashmir to represent India in international cricket, announced his retirement from all formats of the game. Last we have from badminton, a 17-member Indian contingent, including top doubles pair of Swastik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, and men's singles players Lakshya Sen and Ayush Shetty, are all set to begin their campaign at the French Open tournament starting today. Chirag Jha, Sports Desk.
कार्यक्रम के अगले भाग में अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली से जुड़ी खबरों की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और आधुनिक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 325 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े 12 कॉलेजों को वेतन और अवसंरचना और संचालन के लिए 108 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि रखरखाव और स्वच्छता के लिए 24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर विद्यार्थी को उत्कृष्ट शिक्षा, हर शिक्षक को सम्मान और हर संस्थान को मजबूत आधार प्रदान करना है। इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल विश्व सांख्यिकी दिवस पर कहा कि अच्छे आंकड़े सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं और निष्पक्ष तथा पारदर्शी विकास सुनिश्चित करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जब जानकारी विश्वसनीय और समावेशी हो तो ये समान विकास और सतत प्रगति को बढ़ावा देती है। श्रोताओं, रुख करते हैं मुंबई के समाचारों का। मुंबई पुलिस ने बरामद किए गए 800 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। इससे दीपावली पर मोबाइल फोन के असली मालिकों को एक तरह का रिटर्न गिफ्ट मिला है। ये डीसीपी जोन 6 के अंतर्गत खोए और चोरी हुए कीमती सामानों को पता लगाने और उन्हें वापस पाने के उद्देश्य से चलाए गए एक समर्पित अभियान का हिस्सा था। पुलिस ने इसे दिवाली का एक खास तोहफा बताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ठाणे में राजमाता जीजाऊ उद्यान का उद्घाटन किया। इसे ऑक्सीजन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क मानपाड़ा इलाके में हाइड पार्क के सामने स्थित है और इसे पर्यावरण जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी थीम पर विकसित किया गया है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ऐसे हरित स्थलों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्क में प्रवेश करते ही हवा की गुणवत्ता में अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होता है। उन्होंने यहां उगाए जाने वाले औषधीय पौधों के लाभों के बारे में भी बताया। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के समन्वय और उन्हें एक ही स्थान पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विशेष वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये वॉर रूम मुख्यमंत्री राहत कोष और चैरिटेबल हॉस्पिटल हेल्प डेस्क तथा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा के सीईओ की देखरेख में काम करेगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को सुव्यवस्थित तथा समयबद्ध ढंग से लागू करना है। अब बात कलकत्ता के समाचारों की। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस की सहायता से राज्य में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। मुख्यालय और हर जिले में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। ये नियंत्रण कक्ष रात भर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दीपावली के त्योहारों के बीच ये कदम उठाया गया है। अस्पतालों, घनी आबादी वाले इलाकों और हाउसिंग सोसाइटियों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार सुना रही हैं तन्वी।
Let's begin with Chennai. The annual bird migration season, which usually begins from October to April, has started early this year. According to Chennai District Forest Officer V.A. Sarvanan, a September bird census recorded over 14,000 birds from 97 species, highlighting the importance of the Pallikaranai Marsh as a key migratory site. Migration patterns remain mostly stable. The western yellow wagtail arrived in early September, followed by the grey-headed lapwing in October. And we have some more news from Chennai itself. The Metropolitan Transport Corporation, MTC, announced that out of the 10.4 crore passengers who used its services last month, 2.73% made payments through Singara Chennai cards, UPI, debit, credit cards or the Chennai One app. According to the information provided by the Transport Corporation, around 3.97 crore women travelled for free under the Vidyal Panayam scheme. Moving towards Hyderabad, the Telangana police shot dead a 24-year-old man named Riaz, who is accused of killing a police constable in Nizamabad. State Director General of Police, DGP B. Shivadhar Reddy, announced this yesterday. Riaz had been on the run after allegedly stabbing police constable to death on 17th of October when the constable was escorting him to the police station in Nizamabad in a bike theft case. Riaz was captured after launching a massive manhunt 2 days later on last Sunday by a police team with the help of a citizen. The DGP has announced ex gratia of 1 crore rupees to Constable Pramod's family, a government job for a family member, 300 square yards of a residential plot, an additional 24 lakh rupees ex gratia from the police department welfare funds. And let's talk about Bangalore. The Male Mahadeshwar Temple Deepavali celebration is drawing devotees in thousands from across different southern states. The 5 days festival that started on 18th of October will go on till tomorrow. Special pujas, a chariot festival and other rituals will be followed as customary according to the tradition. The festivities began with an oil bath of the Shivling and a grand temple chariot was taken out on the street yesterday. The Karnataka State Road Transport Corporation is running special buses to MM Hills for the convenience of the devotees. The district administration has ensured that the environment is protected during the festivities. The use of plastic materials are banned on the hills and the checkposts confiscate any plastic materials from the visiting disciples. So these were the updates from Chennai, Bangalore and Hyderabad.
आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की। इधर राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने और आंशिक रूप से दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और कोलकाता में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुनने के लिए चलते हैं तन्वी के पास।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or even drizzle. The temperature will hover somewhere between a minimum of 24 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पुलिस स्मरण दिवस के महत्व के बारे में सीआरपीएफ की बहादुरी का एक किस्सा है। गौरतलब है कि आज से 55 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में तीसरी बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। कंपनियों को टुकड़ियों में बांटकर चौकसी करने को कहा गया। जब बल के 21 जवानों का गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण किया। तब बल के मात्र 21 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 शूरवीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे सैनिकों और हम सब के लिए गौरव की बात है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों और सभी राज्यों की सिविल पुलिस द्वारा पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सलाम है आज के दिन पुलिस के उन जवानों को जो हर पल हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
Absolutely. And just adding a few more things on this special day. Today, Defence Minister Rajnath Singh will lay a wreath at National Police Memorial in New Delhi. Union Minister of State for Home Affairs, heads of Central Armed Police Force, that is CRPF, Central Police organisations will pay homage to the martyrs by laying wreaths. A joint parade of Central Armed Police Forces and Delhi Police will be held.
इसके अलावा अपने सुनने वालों को हम बता दें कि आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अथवा वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस भी है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताना है। दुनिया भर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग एक आम समस्या बनती जा रही है। अगर हालिया स्थिति की अगर बात करें हम, तो दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी पर आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से पीड़ित होने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 54 देशों में आयोडीन अल्पता अभी भी है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। शरीर में आयोडीन को संतुलित बनाने का काम थायरोक्सिन हार्मोन करता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन की कमी से मुख्यतः घेंगा रोग होने का खतरा रहता है, इसलिए उन चीजों का सेवन करें जो आयोडीन की कमी को पूरा करती हों। इनमें दूध, दही, नमक, मोटे अनाज, हरी सब्जियां और फलियां विशेष रूप से शामिल हैं।
Absolutely. And around 1.88 billion people worldwide are still at the risk of iodine deficiency, including nearly 30% of school-aged children. Since 1993, the WHO and UNICEF have promoted universal salt iodization, and now more than 120 countries have adopted this important public health measure. World Iodine Deficiency Day is a reminder of the need to continue promoting iodine-rich diets and iodized salt to protect global health.
इसलिए श्रोताओं, अगर आप आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचना चाहते हैं, तो जैसा कि बताया कि इन चीजों का सेवन, जिनमें फलियां, मोटे अनाज, दूध, दही सब शामिल हैं, उनका निरंतर सेवन करते रहें और खुद को इन रोगों से दूर रखें। और अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 1555 में इंग्लैंड के संसद ने फिलिप को स्पेन के राजा के रूप में मानने से इनकार किया।
In 1727, Russian and Chinese agreed to correct boundaries.
1918 में मार्गरेट ओवन ने एक मिनट में 170 VPM की टाइपिंग स्पीड के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।
In 1816, Penang Free School, the oldest English language school in Southeast Asia, was founded in Malaysia by the English clergyman Reverend Hutchings.
1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।
In 1879, Thomas Edison successfully tested his first electric light bulb on this day.
1948 में संयुक्त राष्ट्र ने आणविक हथियारों को नष्ट करने के रूस के प्रस्ताव को ठुकराया।
In 1943, नेताजी सुभाष चंद्र बोस declared the provisional government of free India.
1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना भी आज ही के दिन हुई।
In 2019, Australia's major newspapers blacked out their front pages in protest against government restrictions on press freedom.
वर्ष 1954 में भारत और फ्रांस ने पुदुचेरी, कराईकल और माहे को भारत में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 1 नवंबर से लागू हुआ। और अब कार्यक्रम में बात उन महानुभावों के जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। सबसे पहले बात गोवर्धन असरानी की। श्रोताओं, उनका कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। असरानी के नाम से वे बेहद लोकप्रिय रहे। अभिनेता के भतीजे अशोक असरानी ने बताया कि असरानी ने कल शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी जीवन पर।
असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की और फिर राजस्थान कॉलेज से स्नातक भी किया। उन्होंने 2-3 साल आकाशवाणी जयपुर में काम किया और फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़िया से असरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वो बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आए और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुए। शोले में जेलर की भूमिका के लिए वे काफी प्रसिद्ध हुए। असरानी ने ये रोल चार्ली चैपलिन और हिटलर के स्टाइल को मिलाकर निभाया था।
अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सकते तो तुम क्या सुधरोगे?
असरानी ने चुपके चुपके भूल भुलैया, धमाल और बंटी और बबली जैसी हिट फिल्मों में भी अभिनय किया। उनके निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मुथुस्वामी दीक्षितर, अ साउथ इंडियन पोएट, सिंगर, वीणा प्लेयर एंड प्रोलिफिक कंपोजर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक अलोंगसाइड त्यागराज एंड श्याम शास्त्री। Dikshitar was born on 24th of March 1776 in Thiruvarurar in Tamil Nadu. His family traditionally traced its lineage to Virinchipuram in the northern part of Tamil Nadu. Muthuswami Dikshitar is credited with about 500 compositions noted for their elaborate poetic descriptions of Hindu deities, architectural depictions of temples and for capturing the essence of rags through the Veena style which emphasizes gamakas. So the composition that you're listening to in the background is one of the Navratna Kritis by Muthuswami Dikshitar and voiced by M.S. Subbulakshmi. So let's hear that.
निश्चित ही ऐसी कंपोजिशंस को सुन के मन में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती
है। एब्सोल्युटली, इट्स अ ट्रेजर। एंड टुडे इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कैरी फिशर, एन अमेरिकन एक्ट्रेस एंड राइटर। इफ एनीवन हैज सीन द मूवी स्टार वॉर्स, शी यस वाज द प्रिंसेस लेया फ्रॉम 1977 टू 1983। एंड शी हैज प्लेड दिस रोल सो ब्यूटिफुली एंड अलोंग विद दिस शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ मूवीज लाइक शैम्पू, द ब्लूज ब्रदर्स, हैना एंड हर सिस्टर्स, When Harry Met Sally, Soap Dish, and a lot more. Well, she wrote several semi-autobiographical novels, including Postcards from the Edge and many more. She was posthumously made a Disney legend in 2017 and was awarded a posthumous Grammy Award for Best Spoken Word Album the following year. Let's hear her experience about her evergreen role as Princess Leia in Star Wars.
Playing the role of Princess Leia was fun a lot of times. Well, it wasn't fun all the time. After about 2 hours in the garbage room, the fun started to wear off and your skin started to wrinkle and your rubber suit didn't fit right anymore. But we had a good time. When we did the swing across, it would have been fun if we'd been allowed to do it a second time. But it was like doing the upside down roller coaster. We did it one time and it was scary. And then if we'd gotten to do it again, it would have been fun. But they didn't let us do it again.
आज पुण्यतिथि है मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक यशराज चोपड़ा की। उन्होंने दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है जैसी कई फिल्में बनाई हैं। उन्हें 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्देशित फिल्म वीर जारा से ये गाना।
धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा।
इसके अलावा यशराज चोपड़ा ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का भी सफल निर्देशन किया। उनके इस फिल्म से ये गीत प्रस्तुत है।
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ।
Today is the birth anniversary of Alfred Nobel, a Swedish chemist, inventor, engineer and businessman. He is known for inventing dynamite as well as having bequeathed his fortune to establish the Nobel Prizes. He donated his fortune to a foundation to fund the Nobel Prizes, which annually recognize those who have conferred the greatest benefit to humankind.
Aaj jayanti hai prasiddh abhineta Shami Kapoor ki. Unka vastavik naam Shamsheer Raj Kapoor tha. अपनी विशिष्ट याहू शैली के कारण वे बेहद लोकप्रिय रहे। वे हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार थे। उन्होंने ब्रह्मचारी, प्रोफेसर, चार दिल चार राहें, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लफ मास्टर सरीखे फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के लिए फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया।
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
Today is the birthday of Kulbhushan Kharbanda, an Indian actor who works in Hindi and Punjabi films. He is best known for his role as an antagonist, Shakal, in Shaan, starting off with the Delhi-based theatre group Bork in 1974. So we have a dialogue from one of his films. Let's hear that.
तुझे सीखने की जरूरत नहीं है। भगवान ने ये खूबियाँ तुझे पैदाइशी बख्शी हैं।
पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी। अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे।
आज जयंती है भारतीय पुरातत्व विद्वान काशीनाथ नारायण दीक्षित की। गुजरात में प्रागैतिहासिक युग संबंधी उत्खनन कार्य को शुरू करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने भारतीय संग्रहालयों का अखिल भारतीय संघ स्थापित कराया। पुरातत्व विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद काशीनाथ दीक्षित ने सर्वप्रथम मुंबई और लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं दी।
And today is the birthday of Muzaffar Ali, a multifaceted Indian filmmaker, artist, designer, poet and cultural revitalist. He began his career in advertising before transitioning to filmmaking and created the magnificent Umrao Jaan. So we have a song from the same film. Let's hear that.
कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार कि सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, उद्देश्य के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए प्रसन्न रहें और हमेशा बढ़ते रहें उगते सूर्य की तरह। इसी सुविचार के साथ अनुमति दीजिए मुकेश और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next at Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.